ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफ्रीकी संघ के अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 CDRI में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। एक वीडियो संदेश के जरिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने व्यवहारिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और विकासशील राष्ट्रों की धन तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि विशेष ध्यान दिए जाने के हकदार और अपनी संवेदनशीलता के कारण छोटे द्वीप वाले विकासशील देशों को विशाल महासागर वाले देशों के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक समय पर निर्णय लेने और अंतिम छोर तक प्रभावी संचार में सहायक होने के कारण समय रहते चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना और समन्वय निर्णायक होगा। भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को इससे बाहर निकाला गया। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की यह दर 2011-12 में 27.1% थी, 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में थे और 2022-23 में ये संख्या तेजी से घटकर 7 करोड़ 52 लाख के करीब रह गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला और जनधन योजना तथा आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर को घटाने में सफलता मिली है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते और दोहरी योगदान संधि को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ बैठक में कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के आपसी व्यापार और निवेश में तेजी आएगी, साथ ही आपसी संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
The recent conclusion of the India-UK FTA and the Double Contribution Convention is truly a milestone. It will not only propel our two-way trade and investment, but will also have a positive effect on other strategic aspects of our bilateral ties. It would also contribute to the strengthening of supply and value chains.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत ने कानून के शासन, वैश्विक सहयोग और विश्व मंच पर वार्ता की जरूरत का हमेशा समर्थन किया है। ब्राजील के ब्रासिलिया में ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक के बाद श्री बिरला ने बताया कि ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है।
ब्रिक्स सम्मेलन की समिट का आज अंतिम डिक्लेरेशन हुआ और अंतिम डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए।
श्री बिरला ने बताया कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी दसां एविएशन और भारत की टाटा एडवांस्ड लिमिटेड सिस्टम ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने पर संबंधित 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भ्रामक और अनुचित व्यापार में शामिल न होने की सलाह दी गई है। प्राधिकरण ने एक परामर्श में कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 3 महीने के भीतर स्वयं निरीक्षण करें और अनुचित पद्धतियों का पता लगाएं। देश में आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने आज सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने स्टार विंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का अपना 7वां खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।